अब एक सवाल और है कि क्या यहुद्द मिन अबसारे हिम का जो हुक्म था ये हर मौके पे, और क्या मर्द कभी नहीं देख सकता? तो कुछ मौके नोट कर लीजिए कि जिस वक्त में एक मर्द भी औरत को देख सकता है और इवन औरत भी मर्द को देख सकती है। पहली सूरत उसमें क्या है? निकाह। जब कोई मर्द किसी लड़की से शादी करना चाहे तो पसंदीदा अमल क्या है कि वो उसको देख ले। अल्लाह के नबी सल्लम के एक सहाबी थे, मुगीरा बिन शोबा, कहते हैं कि मैंने एक जगह निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुमने लड़की को देख लिया? तो मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, तो फरमाया कि उसे देख लो, इससे ज़्यादा तवक्को की जाती है कि तुम्हारे दरमियान मुवाफ़कत होगी, यानी तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी। यह अहमद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और दारमी की रिवायत है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से पहुंची कि एक शख्स ने कहीं शादी का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लड़की को देख लो, क्योंकि अंसार की आंखों में कुछ खराबी होती है। ये मुस्लिम, नसाई, अहमद की रिवायत है। फिर एक और रिवायत है जाबिर बिन अब्दुल्ला की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स किसी औरत से निकाह की ख्वाहिश रखे तो हत्तुल इम्कान उसे देख ले, और ये इत्मीनान कर लेना चाहिए कि क्या औरत में ऐसी कोई खूबी है जो इसके साथ निकाह करने की तरफ रागिब हो। अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है। बल्कि एक रिवायत मुसनद अहमद की, जो उसमें आपने फरमाया कि फला जुनाह अलैही, किस पे कोई गुनाह की बात नहीं है। तो क्या पता चला, कोई देखना चाहे तो देख ले, ना देखना चाहे तो ना देखे, लेकिन देखना पसंदीदा है। दूसरी चीज़ जिस वक़्त कोई भी किसी को देख सकता है वो है तफ्तीश। मुजरिम की तफ्तीश हो रही है। अब एक औरत है, उस पर इल्ज़ाम लगा, कोर्ट में फैसला गया, तो क्या काजी उसको नहीं देखेगा? क्या अदालत में गवाही के मौके पर किसी औरत का गवाही देना उस वक्त उसको नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा। यानी ऐसे उमूर जिसमें देखना नागुजीर हो, बिल्कुल देखा जाएगा। इस तफ्तीश पे आज के दौर में जो बेहतरीन चीज़ हो सकती है वो क्या है? हमारी जो आईडीज़ होती हैं, पासपोर्ट पे तो ऑलवेज ही होती है, दूसरी आईडी पे होती है, इस पे क्या किया जाए? साथ ही साथ इसको भी देख लें, क्योंकि ये मसले फिर आएंगे और भी, कि इसमें क्या होना चाहिए कि आपकी अगर आईडी पे तस्वीर है और तफ्तीश करनी है उन्होंने कि आपको मैच करना है, कि जो पासपोर्ट आप लेके जा रहे हैं आप वही हैं, तो क्या किया जाए? बेहतरीन तरीका क्या है कि काउंटर पे जब आप जाएं तो पहले ही वो देखें कि जो औरत का काउंटर हो, अगर आप औरत हैं। हालांकि बात चाहे मर्दों की हो रही है, लेकिन बात समझ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई फ़ीमेल नहीं, तो वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे फ़ीमेल चाहिए। बड़े शौक से वो आपको अंदर ले जाते हैं, वहाँ जाके फ़ीमेल देखती हैं। और मैंने देखा है जितना ये आसान गैर मुस्लिम मुल्कों में, उतना शायद मुस्लिम मुल्कों में भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम मुसलमान फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वहाँ वालों ने कभी तकाजा कर दिया होगा कि अपना निकाब उठाएं। मैं खुद जाती हूँ, मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाज़ों में ज़्यादा जाना पड़ता है, तो हर जगह जहाँ जाते हैं, कभी भी आज तक पिछले कई साल हो गए हैं, एक मौका ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने ये कहा कि नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे। वो खुद ही मुझे निकाब में देख के कहते हैं, ओके वेट हेयर, वी विल कॉल समवन। और वो जब जाती हैं लड़कियाँ, इतने प्यार से मुझे ले जाती हैं, फिर अच्छा कहने टच यू, कैन आई टच योर हैंड, कैन आई टच योर निकाब, वट इज़ दिस, और अच्छा मौका मिल जाता है उनको बात करने का। लेकिन बिलफर्ज कोई ऐसा मौका आ जाए कि कोई कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तुम्हें ही दिखाना है, नहीं तो जाओ, तो फितने की बजाय दिखा दे, और आपका निकाब होगा तभी दिखाएंगे ना, अगर आप ऐसे खुले हैं तो कोई आपसे पूछता भी नहीं। तो बहरहाल तफ्तीश किसी भी तरह की। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ क्या है, या अगली चीज़ वो क्या है? इलाज की गर्ज से तबीब को दिखाना। हर जेंडर को कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही जेंडर का डॉक्टर रखे, मेल मेल के पास जाएं, फीमेल फीमेल के पास जाएं। लेकिन अगर हम ऐसा ना हो, एक्सेप्शनल ना, इसको आप स्टेटस कॉन्शियस बनाएं कि हमें तो डिलीवरी भी मेल से ही करानी है क्योंकि फलां का भी मेल ही था, ये भी एक स्टेटस सिंबल है आज के दौर में। नाम नहीं लेना चाहती, एक बहुत मशहूर सियासतदान थी, चली गई दुनिया से, लेकिन लोग उनका नाम लेके कहा करते थे कि उनका भी तो डॉक्टर फलां है तो हम भी वही रखेंगे, और आम डॉक्टरों से ज़्यादा उनकी कीमत होगी, लेकिन चूंकि उनका है तो हमारा भी होगा। हाँ, जहाँ मजबूरी है, कोई काम ऐसा है, फीमेल डॉक्टर नहीं है या उससे टैकल नहीं हो रहा, संभाला नहीं जा रहा, तो सूरत में अगर मजबूरी है तो फिर उतना हिस्सा या वो जगह इलाज की नज़र से देखी जा सकती है जिसको मतलब देखने की ज़रूरत है। तो आप सोच सकते हैं कि इस्लाम कितना लॉजिकल दीन है। इस्लाम ने ना हमें बिल्कुल बेकार इस तरह की चीज़ों में डाल दिया, ना दूसरी तरफ डाल दिया कि एक एक्सट्रीम पे होके दुनिया के काम ही रोक लो, सारा जहाज़ तुमने रोका हुआ है, सिर्फ तुम बहस में बढ़ गई कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं करना, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए कि एक और चीज़ नज़र के नाते से करके फिर हम अगली चीज़ पे चलते हैं, और वो क्या है कि जब भी किसी जगह एक इंसान की नज़र पड़ती है, जैसे यहाँ मर्दों की बात हो रही है, आगे जाके फिर औरतों की भी होगी, तो क्या फिर हम टीवी नहीं देख सकते, खबरें नहीं सुन सकते, क्या हम कोई लेक्चर नहीं देख सकते, यानी वीडियोस पे, डीवीडीज पे? तो इसके बारे में वही बात जहन में रखिएगा कि यगुद्दु मिन अबसारिहिम। और इसी में मैं एक और लाइफ चीज़ भी ऐड कर लूँ, कोई उस्ताद है पढ़ाने वाले, वो मेल है, कहीं अब लेक्चर में जाते हैं, वहाँ एक मेल स्पीकर है, ऑफ कोर्स मर्द तो किसी औरत की महफिल में बैठ के नहीं सुनेगा, ये तो शरण इजाज़त ही नहीं है, अलग बैठ के कोई सुन ले जहाँ बीच में कोई रब्ता नहीं है, ये एक अलग बात है, जैसे कोई सीडी सुनता है, कैसेट सुनता है, अगर कहीं लेक्चर हो रहा है, औरत औरतों में कर रही है, मर्द कहीं बाहर बैठ के सुन रहे हैं, उसको नहीं पता, इस ओके, कोई बॉन्ड नहीं है उनके बीच में। लेकिन अब अगर एक औरत ऐसी जगह गई कि वहाँ मर्द स्पीकर है, तो क्या करे, नहीं जा सकते? तो इसके बारे में सारी बातों को जो जमा कर दें, नंबर एक, बिल्कुल आमने सामने नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, बस जैसे अभी हमारा रूम छोटा है या मुनासिब चीज़ का है कि अगर मेरी टेबल कोई बैठता है तो अब आप लोग बिल्कुल करीब बैठे हैं, मैं नहीं पसंद करूंगी। हमें इवन एक आध ऐसा चीज़ रखनी है आप लोगों के लिए, और उसके लिए मैं मुसलसल सोच रही हूँ कि हम पहले जगह बड़ी कोई देखें कि जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उस पर्सन से दूर हों, ताकि बहुत क्लोज ना हो, क्योंकि फ़र्क पड़ता है, करीब होने से तो रेस भी निकलती हैं। फिर अगली बात यह है कि आप अगर कोई टीवी पे बैठे हुए देख रहे हैं, या स्क्रीन लग रही है, या जैसे आजकल तो आम बात है मस्जिदों में आप जाते हैं तो बड़ी बड़ी स्क्रीनों के जरिए नीचे की पूरी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो डायरेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं, लेकिन जहाँ आपकी नज़र भटकी, अभी आप फैसला करेंगे कि कहाँ यक फजू फुरूजम हो रही है कि नहीं, पता चले लेक्चर सुनते हुए भी आप उनकी आंखों पर गौर कर रहे हैं, आप उनको देख रहे हैं। अब इसी में आप फिर एक और बात कर लें, गेम्स का खेलना, क्रिकेटर्स को देखना, और उस पर दलील मौजूद है, आगे आएगी कहीं हदीस के, अल्लाह के नबी ने एक मौके पे हज़रत आयशा को दिखाया भी था कि उस दौर में बड़े बड़े चोगे पहन के तो हबशी जो होते थे वो नेज़ों से खेलते थे, शायद किसी तारीखी ड्रामे में आपने कभी देखा, इस तरह का एक मंजर था, अल्लाह के नबी खड़े देख रहे थे, हज़रत आयशा भी पीछे से जाके आपके कंधे पर सर रख के देखने लग गई, आपने मना नहीं किया, कहती हैं थोड़ी देर आप भी देखते रहे, मैं भी देखती रही, फिर हम पीछे हट गए। अब ये बात भी आती है, तो अब क्या करें? अब आप देखिए, नंबर एक, अगर ये चीज़ आप साथ लेते हैं, और ऑफ कोर्स बोथ वे पे, तो पहली बात यह है कि उन्होंने खिलाड़ियों के खेल को देखा, बस खिलाड़ियों को ना देखें, जब नज़र खिलाड़ी के खेल से ज़्यादा खिलाड़ी पे पड़ जाए तो समझे यक फजू फुरूज अमनी हुआ। आप कहेंगे ये कैसे पता चलेगा, जाइए देखिए, खिलाड़ियों के पोस्टर्स बेटियों के कमरों में लगे हुए तो नहीं है, आपके हीरोज़ वो तो नहीं है कि जो खेलते रहते हैं, फिर आज के दौर में जो खेल के जो ड्रेसेस पहने होते हैं लड़कों ने, इतने स्ट्रेची होते हैं, इतने टाइट होते हैं, खेलते हैं उन यकफजू फुरूजम हो ही नहीं रहा, जिसको आगे हम देखेंगे कि यकफजू फुरूजहम, शर्मगाहों की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत दो तरह से होगी, नंबर एक, इनको ढांक के रखो, नंगा करने से बचो, नेकेड ना करो, और इस तरह से ना ड्रेसअप करो अपने आप को कि पहन के भी कपड़े तुम्हारा जिस्म दिखे। अभी देखिए हम मर्दों की बात कर रहे हैं सिर्फ, अब आप बताइए कि टाइट जीन के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसके ऊपर शर्ट भी अंदर गई हुई है, हम में से कितने लोग हैं जो औरत के पर्दे पे तो इतनी बात करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, और कभी नहीं मैंने सुना होगा किसी के से, इल्ला माशाल्लाह कोई अगर कर दे, कि वो कह के मर्द के लिए भी टाइट्स पहनना या हिप से टाइट शर्ट्स पैंट्स को पहन के ऊपर ऊंची शर्ट पहनना उतना ही गलत और उतना ही नाजायज़ है जितना कोई औरत पहने। आज के दौर में तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली आप देखिए कि जो पैंट्स होती हैं या होती थी वो इतनी टाइट होती थी, मर्दों की पूरा जिस्म दिखता है, मर्द का जिस्म तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है औरत के जिस्म से, बिल्कुल इजाज़त नहीं। मर्द भी अगर शर्ट पहनेगा तो वो हिप से नीचे तक की पहनेगा, जो सतर है, जिसको आगे हम जाके देखेंगे कि पेट से लेके रानों के बाद यानी घुटनों से लेके नाफ तक जो होता है ये मर्द का भी सतर है। और यक फजू में हिफाजत क्या है कि या तो सी थ्रू पहना हुआ है, इतना टाइट है, इतना पतला है कि उसमें से अंदर से अंडर गारमेंट्स तक दिखें, और दूसरी सूरत इसमें क्या होती है कि इतना टाइट या इतना स्ट्रेची हो कि जिस्म का वसफ दिखे। यही बात औरत के लिए, यही मर्द के लिए। दूसरा, यक फजू का मफहूम क्या है कि जिना से बचाए, यानी मर्द अपने आप को, अपनी शर्मगाह को कैसे बचाएगा कि वो जिना नहीं करेगा। गोया के लिबास का जिना से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जब औरतों और मर्दों के लिबास सातिर नहीं रहते ना, तो शर्मगाहों की हिफाजत नहीं होती। ये दोनों काम नहीं करने होंगे। ऐसा लिबास ना हो कि जिसमें से जिस्म छलके, और ऐसा लिबास ना हो कि टाइट। अरबी में इसको कहते हैं ना शफाफ हो और ना बस साफ हो। शफाफ शफाफ से यानी ट्रांसपेरेंट, और ना वसाफ, वसफ बयान करने वाला, फिगर पता चल जाए ये मोटी है ये पतली है ये कैसी है। यही शर्त मर्द के लिए, यही औरत के लिए। और आप यहाँ गौर करेंगे कि मर्द को तो ये दो हुक्म दे के बस छोड़ दिया गया और कहा कि जाओ ये ऐसा कर लोगे तो ज़ालिका अज़्का लहुम, ये उनके लिए बेहतर है, ये दो चीज़ें कर लो ठीक है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनाउन, और अल्लाह को खूब पता है तुम क्या करते हो। आप गौर करके देखें, हमारे ड्रेसअप का, हमारे ड्रेसअप होने का हमारे इमोशन से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। मर्द भी घर में ढीले ढाले कपड़े पहनते ही हैं ना, उनको भी आप देखें, आम का हालत में होंगे तो उनका कोई और मूड होगा, और जब एक बंदा अच्छे हालत में अच्छे कपड़े पहन के, और जो खैर से किसी पीसी में जा रहे हैं, शादी में या बड़ी होटल में जा रहे हैं, फिर उनकी भी चाल देखा करें, फिर उनका भी परफ्यूम की सिलेक्शन देखा करें और जूता देखें। और ये फितरत है, आप जिस रूप में होते हैं ना, आपका वही काम करने को दिल जाता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ, अगर मैं यहाँ आने से पहले कंघी ना करूँ, मैं कभी इतने प्यार से आपको नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आएगा, मुझे नींद आएगी, मैं गंदी मंदी रहूँगी, मेरा दिल ही नहीं लगेगा इसमें, मुझे खुद से स्मेल आएगी। तो ड्रेस और इज्जत की हिफाजत ये साथ साथ चलती है। आगे औरतों को भी यही बात कहेगी, साथ ले लेते हैं फिर कुछ, यानी मुश्तरक मसाइल साथ साथ आते जाएंगे तो उस पर हम डिस्कशन कर सकेंगे बाद में। लेकिन ये जो शर्मगाह की हिफाजत है, इसके बारे में एक रिवायत अभी नोट कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई मर्द किसी मर्द के सतर को ना देखे और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे। अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। इसी तरह हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी जिंदा या मुर्दा इंसान की रान पर निगाह ना डालो। अबू दाऊद और इब्ने माजा की ये रिवायत है। तो सतर का लफ्ज़ जब यहाँ आ गया तो सतर आप नोट कर लें, औरत और मर्द का एक ही सतर होता है, नाफ से घुटने तक। मर्द का भी मर्द से इतना है और औरत का भी औरत से इतना है। कुछ हालात में कुछ एक्सेप्शंस है जो आगे हम देखेंगे। इस हिस्से जिस्म को बीवी के अलावा किसी दूसरे के सामने कसदन खोलना हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक दफ़ा एक बुज़ुर्ग बैठे थे जो सहाबे सुफ़ा में से थे। कहते मेरी रान खुली हुई थी, कपड़ा हट गया होगा रान से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रान यानी थाइस जो होती हैं, हिप्स जो होते हैं उससे थोड़ा नीचे, ये छुपाने के काबिल चीज़ है। ये तिरमिज़ी अबू दाऊद की रिवायत है और मौता की। इसी तरह हज़रत अली फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी रान कभी ना खोलो। अबू दाऊद और इब्ने माजा की रिवायत है। अब बताएं, अगर एक मर्द सिर्फ अंडरवियर पहन के घर में फिरे तो वो कैसा रहेगा, यानी घुटनों तक छुपाना ही पड़ेगा। अब ये कि अच्छा जी ठीक है, सबके सामने नहीं बीवी के सामने है तो क्या अकेले में क्या हाल है, तो अल्लाह के नबी से भी ये बात पूछी गई थी कि तन्हाई के अंदर क्या हाल है, यानी घर में हम ऐसे ही फिरे, कोई नहीं देख रहा, बंद है कमरा, चलो रिलैक्स होते हैं। तो पूछा गया तो आपने फरमाया, खबरदार कभी नंगे ना रहो, क्योंकि तुम्हारे साथ वो हैं जो कभी तुमसे जुदा नहीं होते, यानी खैर और रहमत के फरिश्ते, सिवाय उस वक्त के जब तुम रफाए हाजत करते हो या अपनी बीवियों के पास जाते हो। लिहाजा इनसे शर्म करो और इनका एहतराम मलहूज रखो। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है। एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने सतर को अपनी बीवी और लौंडी के सिवा हर एक से महफूज रखो। पूछने वाले ने पूछा कि जब हम तन्हाई में हों तो, फरमाया फल्लाहु तबारक व ताला अहक्कु अन यस्तहया मिन्हु, तो अल्लाह तबारक ताला तो इसका ज़्यादा हकदार है कि इससे शर्म की जाए। अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्ने माजा की रिवायत है। और साफ साफ जाहिर है, जब आप औरतों में औरतें नंगी होंगी तो होमोसेक्सुअलिटी बनेगी, लेस्बियंस बनेंगे, मर्द मर्दों में अकेले होंगे नंगे होंगे तो वहाँ होमोसेक्सुअलिटी होगी, और अगर अकेले में आप होंगे तो खुद से प्लेयर लेंगे। कोई बंदा जो खुद अकेला है और अभी उसकी शादी नहीं हुई, हत्तुल बस अपने ड्रेस कोड की हिफाजत करें। अगर आपके ऊपर जज्बात का जज्बा है, ढीले कपड़े पहने, मत देखें अपने आप को भी शीशे में, दूसरों को देखना तो दूर की बात है, मत देखें गंदी तस्वीरें, मत ऐसी जगहों पर जाएं कि जहाँ ऐसी गंदी बातें ज़्यादा हो रही होंगी, इंशाल्लाह जज्बात जो है वो कभी भी नहीं भड़केंगे। और अल्लाह की ज़ात तो बंदे के साथ ही होती है ना, एक बुराई से दूसरी बुराई फैलती है। शैतान ने सबसे पहला वार जो इंसान पे किया था, क्या किया था? सूरत आराफ में हम पढ़ चुके हैं, जिसम से लिबास उतरवा देते हैं। आज भी शैतान इसी रास्ते से बंदे से गलत काम करवाता है। एक मारूफ वाक्य सामने नहीं है, लेकिन अपनी याददाश्त से सुनाती हूँ कि एक शख्स बहुत नेक थे, बहुत नमाजी, दीनदार और वट एवर, किसी ने ज़बरदस्ती उनसे कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरी बहन को घर में रख लें, दिस एंड दैट, कुछ इस किस्म के हालात है। उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं करूँगा। हर मजबूर करके उसको कहा देखो वो अकेली रहेगी, क्या होगा, उसको अपने घर में देख जगह दे दी। फिर उसके बाद शैतान उनको माइल करता रहा, और एक ऐसी कैफियत भी आ गई कि तीन कामों में से उनको एक काम की चॉइस दी गई कि या तो इस लड़की से जिना करो, या शराब पियो, या फला इंसान को कत्ल करो। उन्होंने कहा ये तो बहुत मुश्किल बात है। खैर किस्सा मुखसर एंड पे क्या हुआ कि उसने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब पी लेता हूँ, ये सबसे कम गुनाह लग रहा है, कत्ल और जिना तो बहुत बुरी बात है। शराब पी, शराब के नशे में पहले उस लड़की से जिना भी किया और फिर बच्चे को भी कत्ल कर दिया। तो लिहाजा एक बुराई से दूसरी होती, स्लिपरी होती ना, आप एक सीढ़ी से ज़रा सा गिरे ना, कभी भी आप दूसरी पे नहीं गिरेंगे, फिर आप नीचे गिरेंगे जब तक आपका बैलेंस नहीं आता। जो लोग इस वक्त गुनाहों में गिर चुके हैं ना, उनके ऊपर गौर करें, रियायत दें उनको, वो ऊपर से फिसले हुए, उनके कदम नहीं है नीचे, अब आप उनको मौका दें। तो बहरहाल का ज़ालिका अज़का लहुम, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पाक है, इसम तफ़दील है, ये गोया के पाक तरीक़ों में से सबसे ज़्यादा पाक तरीक़ा है, और इसी से इस्लाम फिर नस्लों की हिफाजत करवाता है। इसी तरह आप देखिए कि शर्मगाह की हिफाजत के लिए जिस तरह निगाहों की हिफाजत की यहाँ बात हुई है ना, तो वो चीज़ जो यहाँ है नहीं लेकिन नोट कर लें जो आपको फ़ायदा देगी, कानों की भी हिफाजत करें। गंदे बोल कानों के अंदर जिनसी जज्बात पैदा करते हैं, गंदे बोल, फिल्में, गाने, डायलॉग्स, फिर चैटिंग, टॉकिंग, फ़ोन टॉक्स, कंप्यूटर पे, दिस एंड दैट, ये तो ऐसे हैं जैसे अपने घर में छोटी छोटी माचिस की तीलियां आप जला दें और आप कहें कि घर को आग ना लगे। गलत तहरीरों से बचें, गंदे नावल, फिक्शन, जिनसी नावल पढ़ने, ये जहनी आवारगी होती है, बेमकसद लोगों की ये ज़िंदगी है। ऐसे लोगों को फिर अपने आप को खुद बचाना है। मुसलमानों की नस्लों को महफूज कर दिया सिर्फ एक दरवाजे को बंद करके, और कह दिया कि ये तुम्हारे लिए पाक है, तुम्हारा दिल पाक रहेगा, तुम फोकस्ड रहोगे, तुम बामकसद इंसान बनोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किस काम के लिए आए और किस काम के लिए तुम्हें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है। हम जब इस तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि फिर मकसद से गाफिल हो जाते हैं। आप बच्चे को भेजें कुछ लेने के लिए, जाओ बेटा वहाँ से लेके आओ, आप देखिए वहाँ टीवी चल रहा होगा ना तो उसको देखने लग जाएगा, आप कह रहे आए नहीं तुम, वो मैं तो इसमें मगन था। कई माएँ हैं वो बेचारी चीखती रहती हैं बाहर से कुछ ला दो, मर जाए घर के, वो टीवी से उठते ही नहीं, कहते हैं जो आप खुद ही ले आए, इसीलिए तो आपको ड्राइविंग सिखाई थी। तो ये चीज़ें सारी जो हैं देखने सुनने में वाकई तल्ख लगती हैं, लेकिन आप रियलिटी के साथ देखेंगे तो इस्लाम हमारा दुश्मन नहीं है, और वो हमें हमेशा ही अच्छी चीज़ों की तरफ लेके आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि मुझे दो डरावनी चीज़ों का बहुत खौफ है अपनी उम्मत के बारे में। एक ये कि इनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाएंगी जो हक बात से रोक देती हैं, और दूसरा ये कि ये लंबी आरज़ुओं पे आ जाएंगे जो आखरत से भुला देती हैं। और आप देख सकते हैं कि आपकी एक रिवायत है जिसका खुलासा मेरे जहन में आ रहा है कि जिस तरह जहर बंदे की नस नस में चला जाता है ना, इसी तरह ख्वाहिशात और ऐसी लस्ट जो होती है ये उसका असर बंदे के अंदर चला जाता है। इन्नल्लाह खबीर बिमा यसनऊन पे बाद में गौर कीजिएगा, और इसको मोटा मोटा करके लिख लें हर मर्द जिसके कानों में बात जाए कि मैं जो करता हूँ अल्लाह को उसका पता लग जाता है। और यसनऊन आया, यफालून नहीं आया। यफालून होते हैं आम तरीके पे कोई काम करना, यसनऊन है जैसे सनत व हिरफत उर्दू में, बड़े सलीके से तैयारी से सजा संवार के काम करना। और आप जब देख लीजिए बड़े अहतमाम के साथ हम शैतान के ये दरवाजे खुलवाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, जिसकी वजह से फिर हमें बाकी काम जो है वो मुश्किल लगते हैं। चलिए अगली आयत को भी साथ देख लेते हैं। औरतें जो अभी तक बड़ी खुश दिख रही थीं कि शुक्र है सारे हुक्म ही मर्दों को आए, तो अब ज़रा उनको भी देख लेते हैं। और यहाँ से आप अब इस्लाम का मिजाज समझें, पहले हुकूमत वक्त सिस्टम बनाओ, ऐसी चीज़ों को आम करो जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये किस तरह के काम है, फिर मर्दों से कहा कि अब तुम निगाहें झुकाओ, और अब फिर बिलाखिर मस्तूरात से मुखातिब हुआ जा रहा है। लफ्ज़ मस्तूरात भी कभी बहुत आम था, जब वाकई मस्तूरात मस्तूरात थी। सुना भाई ये लफ्ज मफ़ऊलात, छुपाई हुई औरतें। जब से औरतें छुपना छुटी वो लफ्ज भी छुट गया। पहले लिखा होता था कहीं कोई बड़ा फंक्शन होता था ना तो एक टेंट लग के साल लिखा होता था मस्तूरात के लिए, एक जगह कहीं बात हो रही थी तो कहा कि ये क्या बात है कि ये, यानी कोई ऐसी थी कि अच्छा जी बा पर्दा खवातीन के लिए। तो मैंने कहा कि फिर ये बाहर वाले में भी कुछ लिख दें क्या, बेपर्दा खवातीन के लिए। कहा ये तो बहुत बुरा लगता है। जरा सोचिए ये अंदर बोलता है। यकीन करें किसी बच्चे को अब जंगल में भेजें और वहां पले पढ़े, उसकी फितरत से पूछेंगे जो इस्लाम के अहकामात आप पढ़ रहे हैं हम पढ़ें, उसका दिल गवाही देगा ये सच है। सच है कि नहीं? आप सुनते तो कहीं आपको लगता है कि ये नहीं नहीं ये गलत है? मुझे तो बोलते हुए हर बात लग रही होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फितरत इसको ओके करती जा रही है। ओके 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 ओके, ये दीन कैसे गलत हो सकता है कि अल्लाह ताला हमें ऐसा कानून देगा जो हमारी फितरत के खिलाफ है? तो फिर तो नाउज़ुबिल्लाह ये अल्लाह ताला की शान के खिलाफ है। तो चलिए आगे देखते हैं। वकुल लिल मोमिनाती, और कह दीजिए ईमान वाली औरतों से। ले लिया दिल पर ये पैगाम, मोमिनात को कह दिया। तो फिर इससे ये भी पता चल गया ना कि ये हुक्म मर्दों की अगर फॉर्म में औरतों को दिया जाता, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के अहकामात दिए ए ईमान वालों, तो वो सारे औरतों और मर्दों के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने औरतों को अलग दिया, भला क्यों? औरतों ने भोले बन जाना था। हाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो तो मर्द होते हैं। तो अल्लाह ने कहा तुम कहाँ जाओगी, मैंने ही तुम्हें पैदा किया है। अला यालमु मन खलक, क्या वही ना जाने जिसने पैदा किया, वो तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। तो कहा ईमान वालियो सुनो, यग्दुत्न मिन अबसारिहिन्ना, अपनी निगाहों को झुका के रखो, थोड़ी निगाहें झुकाओ, मिन से यानी जहां जरूरत है झुकाने की वहां झुकाओ, और वयख्फस्न फुरूजहुन्ना, और अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। हिकमत बताई जा रही है निगाहों को झुकाने की, किसी से तुम्हारा दामन पाक रहेगा, तुम्हारी निगाहें नीची होंगी, तुम दूसरों की हवसनाक निगाहों का शिकार नहीं होगी, तुम्हारे लिए ये सारे काम मानने सुनने आसान हो जाएंगे। यहाँ तक तो बात इकट्ठी थी और इस पर एक हद तक बात हो भी गई ना। कुछ अगर सिर्फ औरतों के मामले से कोई बात ज़्यादा हो सकती है तो इसमें भी वही सारी बातें आप रिपीट कर लीजिए कि जिस तरह शादी के मौके पे मर्द औरत को देख सकता है, औरत भी बिल्कुल देख सकती है और देखना चाहिए। बाद में जो नक्स निकालने गई है आप कैसे हैं तो फिर पहले ही देख लें। शादी से पहले औरतें इस पर बड़ी खुश होती हैं, शादी तो हो रही है ना, फिर बाद में पता चलता है कि अच्छा ये भी कमी थी ये भी कमी थी, तो देख लीजिए। अच्छा लेकिन आप देखिए कि अक्सर औरतें मर्दों के शक्लो सूरत के बारे में इतनी क्यूरियस नहीं होती जितने मर्द अपनी होने वाली बीवी की शक्लो सूरत के बारे में क्यूरियस होते हैं। ऐसे ही है ना, क्योंकि औरत के पास शक्लो सूरत के सिवा और होता ही क्या है? तो मर्द के पास तो जेब मोटी है, पैसे हैं, बटवा अच्छा है, तो बस ठीक है, गुजारा हो जाता है ना। तो बहरहाल अगर ज़रूरत हो तो देख सकते हैं, लेकिन अब आपकी शादी हो चुकी है, अब मर्दों को तंग ना करें, अब जो हुआ सो हुआ। और आपको पता है कि ये देखने दिखाने का अमल जो ये मंगनी से पहले होगा। यहाँ मैं इसलिए बोल दूँ कि अब कोई मंगनियाँ की हुई हैं तो उनको इजाज़त ना दे दें कि जाएँ आप मिलें। मंगेतर को नहीं देख सकते आप, मंगेतर से पहले देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? आप लड़कियों के चेहरों पर क्या हो गया, हमारे यहाँ तो ये मसला है ना कि आप तो इनको देखना है, आप तो बात की इजाज़त मिल गई है, हाँ या ना होने से पहले दिखाना है। अगर आप आपका बेटा कह के मैं अब देख लूँगा अब बात करूँगा तो आपका बेटा अब नहीं देख सकता। इरादा हो तो उससे पहले देख लेना चाहिए और उसके बाद नहीं देखा जाएगा। फिर आप देखिए कि ये जो बात है कि औरतें अपनी निगाहों को झुकाएं, और इसके बारे में कुछ रिवायात ऐसी मिलती हैं जिसमें ज़ाहिर कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। कुछ रिवायतें ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जैसे मिसाल है कि हज़रत मैमूना और उम्मे सलमा ये अल्लाह के नबी के पास बैठी हुई थी, ज़ौजे मोहतरमा थी ये दोनों, तो इब्ने मकतूम आए, ये नाबीना थे सहाबी, तो अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से कहा कि इनसे पर्दा करो। तो बीवियों ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी इनकी तो आंखें नहीं है, ये नहीं देख सकते। तो आपने कहा क्या तुम दोनों नहीं इनको देखोगी? अब ये एक रिवायत समझ आती है ना कि आपने उनको मना किया। और उम्मे सलमा कहती हैं कि ये उस दौर का हुक्म है जबकि पर्दे की आयतें आ चुकी थी, अहमद अबू दाऊद और तिरमिजी अब की रिवायत है। अब ये बात देखें तो इसमें ये बात दिखती है। फिर इसी तरह एक और मौका है, हज़रत आयशा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जैसे नाबीना है तो मैं उसे क्यों पर्दा करूं, मैं देख सकती हूँ वो नहीं देख सकते? तो फिर उस पर भी आपने यही जवाब दिया था कि तुम नहीं देख सकती वो तो देख सकते हैं ना। लेकिन इसके साथ अभी मैंने आपको कोट करवाया कि हज़रत आयशा को अल्लाह के नबी ने हबशियों का खेल दिखाया। फिर इसी तरह एक सहाबिया थी फातिमा बिनत कैस, उनके शोहर ने उनको जब 3 तलाक़ें दी तो उनकी इद्दत गुजारने का मसला हुआ। उसमें फिर इब्ने मकतूम का घर सामने आया, क्योंकि चलो दूसरों से वो बेहतर है, उनके पास रह लो। तो ये सारी चीज़ें जब आप जमा करते हैं ना, तो इन सब के बाद आपको एक बात समझ आ जाती है, और वो क्या है कि जिस तरह मर्द किसी औरत को राह जाता देखता है और उसके बाद नज़र फेर लेता है ना, इरादतन नहीं देखेगा, इसी तरह औरत भी अगर किसी ऐसी चीज़ में है, मिसाल आप जैसे खिलाड़ी की बात है, वो दूर खेल रहे थे, अगर उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 7-8 साल की थी। किस्सा मुख्तसर के हालात और मौके की बात है। आपने एक चीज़ नोट की है कि औरतों के बाहर निकलने के सिलसिले में हमेशा ये बात हुई कि औरत चेहरे पे क्या पहने, निकाब ले के ना ले। लेकिन आप देखिए कि मर्दों को कई हुक्म नहीं दिया कि चेहरों को देखो। मुफसरीन इस बात पे लिखते हैं कि औरत को मर्द के चेहरे में कोई इतनी अट्रैक्शन नहीं होती। ये तो फिल्मों ने ग्लैमराइज कर दिया ना, हीरो साहब को और उनकी आंखें और उनकी पलकें, कुछ शायरों ने कर दिया, लेकिन असल में औरत को मर्द के चेहरे से कुछ नहीं होता। तो लिहाजा औरत देखना चाहे ज़रूरत के तहत देख सकती है, लेकिन शहवत ना हो। आप कह सकते हैं कि मर्द औरत को देखे, इसमें शिद्दत है। औरत मर्द की तरफ देखती है बात करते हुए साइड से, ज़रूरत पे उतनी सख्ती नहीं है। लेकिन जहाँ जिसको फील हुआ कि इसकी अब मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स बढ़ रही हैं या आ रही हैं या उसके आ रही हैं, तो फिर उसको अलग करते हैं। बात वाजे। अब इसमें आप सारे लेक्चर्स, टीवी पे आने वाले खबरें और दिस एंड दैट को देख सकते हैं। अब यहाँ तक तो दोनों के हकूक बराबर थे। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि औरतों को कुछ ज़्यादा ही हकूक दे दें, क्योंकि इनको शिकवा बहुत रहता है कि हमें हक कम देते हैं। तो मर्दों को तो 2 बातों के बाद कह दिया कि ज़ालिका अज़का लहुम, लेकिन औरतों से कहा कि आप कुछ और ले लें, और वो क्या है, यख्फ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना के बाद वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी इस्मतों की हिफाजत करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें। आप यहाँ देखेंगे कि औरतों को इन आयात में 6 हुक्म दिए जा रहे हैं। नंबर 1, नज़रों को नीचा रखें, 70 की जगहों की हिफाजत करें, जीनत को ज़ाहिर ना होने दें सिवाय उनके जिनके सामने ज़ाहिर किए बगैर जा रही नहीं है। चौथा हुक्म हम पढ़ेंगे इसी आयत में, अपनी ओढ़नियों से अपने सीनों को ढांप लें। और पांचवा पढ़ेंगे कि ज़मीन पर पांव इस तरह न मारें जिनसे इनकी छुपी हुई जीनत और आराइश की चीज़ें ज़ाहिर हो। और छठी चीज़, इन लोगों का जिक्र कर दिया गया कि जिनके सामने जीनत का इजहार ममनू नहीं। आप कह सकते हैं कि ये 6 नुकाती एजेंडा दे दिया औरतों को किसी भी माशरे को पाक रखने का और औरतों को खुश रहने का। आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का हक उसी जगह दिया, यहाँ वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना कहकर कि औरतें अपनी जीनत को जाहिर ना करें, औरतों को एक एक्स्ट्रा चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई कि औरतों तुम खूबसूरत चीज़ हो और तुम अपनी जीनत को दूसरों के सामने ना रखो। मर्द को नहीं ये कहा गया, इसीलिए उसके लिए कोई निकाब, हिजाब, पर्दे की बात नहीं की गई। औरत सरापाए हुसन है, औरत सरापाए जीनत है। अब ये जो मसला उठाना, वो क्या उठा कि जीनत हुन्ना में क्या क्या आता है, हम अगली लिस्ट को भी नहीं टच करेंगे, सिर्फ लफ्ज़ जीनत पे बात करेंगे कि तुम अपनी जीनत जाहिर ना करो, हाँ मगर मा ज़ाहरा मिन्हा, जो खुद ही जाहिर हो जाए। अब लफ्ज़ जीनत का उर्दू में भी इतलाक होता है, खूबसूरती। अब यहाँ अल्लाह ताला ने औरतों से कहा कि तुम अपनी खूबसूरती जाहिर ना करो। इससे फिर एक सवाल उठता है कि जी जीनत में क्या आता है। कोई कहते हैं जी चेहरा नहीं आता, हाथ नहीं आते, वो नहीं आते, वो हम अलग से देखें, उन सबको एक तरफ करें। आप ज़रा अपने ऊपर लाएं। आप जब बैठे होते हैं, घरों में बातें होती हैं ना, फलां औरत बड़ी प्यारी है, फलां की बच्ची प्यारी है, फलां, हो सकता है बाज़ दफ़ा आप अपने भाइयों के लिए रिश्ते देख रही हों, देखते हैं ना, या अपनी दोस्तों में किसी की बात करें। आप किस चीज़ को जीनत कहते हैं, किसको खूबसूरती, किस चीज़ का नाम देते हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहली चीज़ चेहरा, उसका फिगर। औरत के बाल बड़े प्यारे हैं, उसको क्राउन ग्लोरी कहते हैं इंग्लिश में, के बाल औरत के जो वो चमकते हैं। फिर इसमें मेकअप, जो आराइश की ही इसलिए जाती है कि इंसान अपनी कमियों को पूरा कर दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि सूरह आराफ में हम कपड़ों को पढ़ चुके हैं, खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, के नमाज़ पढ़ते हुए अपने कपड़े पहन लिया करो। फिर इसमें आप देखिए जेवर है, तो बस क्या है, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, ना जाहिर करो अपना चेहरा, ना जाहिर करो अपनी जीनत, ना जाहिर करो अपना फिगर, ना जाहिर करो अपने बाल, ना जाहिर करो मेकअप, ना जाहिर करो कपड़े, ना जाहिर करो जेवरात। बात ख़त्म। देखिए, औरत का तो लफ्ज़ ही पुरकशिश है। आप लफ्ज़ औरत कहेंगे ना तो साथ ही कशिश पैदा होगी। और आप कभी एक चीज़ पे गौर करके देखें कि हम बस दफ़ा क्या कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहने तो औरत खूबसूरत लगी, या मिसाल है कि मेकअप किया तो फलां लड़की बड़ी प्यारी लगी। तो क्या उस लिपस्टिक में कोई कमाल है? रखिए किसी जगह लिपस्टिक रखी हुई हो, मर्दों को पता ही नहीं होता कितनी पड़ी हुई है, कोई नज़र नहीं डालेगा। और वही लिपस्टिक जब औरत लगा लेती है तो मर्द को कशिश पैदा होती है। तो हम जो जुमला बोलते हैं ना वो गलत है। हम कहते हैं कि ये जेवर पहनो या ये मेकअप करो ताकि तुम खूबसूरत लगो, हालांकि उलट क्या है कि औरत सजाती है इन चीज़ों को। लिपस्टिक स्टैंड पे पड़ी हुई, मिट्टी से पड़ी हुई, कोई नहीं देखता। वही लिपस्टिक औरत पे लगती है तो बड़ी प्यारी लगती है। कपड़े आप हैंगरों में लटकाए हो, ज़रा मर्दों से कहा करें देखें, वो बुटीक्स में जाएंगे ही नहीं। कपड़ों वाली दुकानों से मर्दों को वैसे ही बड़ी चिढ़ होती है, आप उसी कपड़े में एक औरत को डाल दें देखें कितना गौर से देखेंगे। जूतों की कोई परवाह नहीं, वही जूता किसी के हसीन पाँव में पड़ा होगा तो कशिश होगी ना। तो फिर असल कशिश किस में हुई? औरत में कशिश हुई। तो वला युबदी ना, अपने आप को जाहिर ना करो। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बता दी, हर बंदे की नज़र फ़र्क होती है नंबर एक, हर बंदे के आराइश करने के तरीके फ़र्क हैं। कुछ ख़वातीन जो मुझे कभी समझ नहीं आता, घंटों के हिसाब से पार्लर्स में बैठी सिर्फ अपने बालों को सजा रही होती, उनकी नोकें नीचे से ऊपर से उनको कलर लगा रही, उनके ये वो। हालांकि जो औरतों में बाल खोल भी लें तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई ब्यूटी में फ़र्क पड़ता है। पड़ता होगा जो करते हैं, बहरहाल मैं कोई ये नहीं मना करी कि आप ना करें, शौक से करें। लेकिन नरेश है, किसी को आप देखें उसको कपड़ों का शौक़ होता है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सज रहा होता है। किसी को जूतों का शौक़ है, किसी को पर्सों का शौक़ है। हर बंदे की एक मुख्तलिफ सोच है ना। तो अल्लाह ताला ने यहाँ औरत को उसकी खूबसूरती की इन तमाम चीज़ों को छुपाने से रोका, और सादिका इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो जाहिर हो जाए।